जय गुरुदेव जय गुरुदेव
जय गुरुदेव जय गुरुदेव
ओम अशरण शरण शरण प्रभु ले
ओम अशरण शरण शरण प्रभु ले
ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव
ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव
गुरु राखहिं जो को विधाता वचन प्रति तन जाई
गुरु के वचन प्रति तन जाई
सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताई
सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताई
ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव
महापुरुष दुनिया में सत्य के नाम पर फैली और सत्य से प्रतीत होने वाली कुरीतियों का शमन करके कल्याण का पथ प्रशस्त कर देते हैं। यह पथ भी दुनिया में पहले से रहता है, किंतु उसी के समांतर उसी की तरह भासने वाले अनेक पथ प्रचलित हो जाते हैं। उनमें से सत्य को छांटना कठिन हो जाता है कि वस्तुतः सत्य क्या है। महापुरुष सत्य स्थित होने से उसमें सत्य की पहचान करते हैं, उसे निश्चित करते हैं और उस सत्य की ओर अभिमुख होने के लिए समाज को प्रेरित करते हैं। यही राम ने किया, महावीर ने किया, यही महात्मा बुद्ध ने किया, गुरु नानक इत्यादि सभी ने यही किया। यही प्रयास महान संत कबीर ने भी किया, जिनकी वाणी के यथार्थ विश्लेषण के चित्रण का यह प्रस्तुति तीसरा चरण है। कबीर वाणी के अंतराल में छिपे रहस्य उद्घाटन के तीसरे प्रयास में पुनः परम पूज्य गुरुदेव की वाणी आपके मन एवं मस्तिष्क को आप्लावित करने के लिए प्रस्तुत है। आपकी वाणी ने विश्व के सारे धर्मशास्त्रों को यथार्थ रूप में सरलता से बोध कराकर मानव के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में अद्भुत सहायता की है। परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की इस वाणी का संग्रह हमने 20 अक्टूबर 1993 को बरचर स्थित महान ऋषियों और मुनियों के तपोवन में किया था। विश्वास है कि आप इस महान गुरु कृपा रूपी वाणी को मनोयोग से सुन समझकर अपने जीवन में क्रियान्वित करने का प्रयत्न करेंगे।
भजन है कबीर का। पहला एक भजन था छाओ छाओ हो फकीर गगन में कूटी, उसका अंतिम पद था कहे कबीर अगम गोहरावे आवागमन की भीतर मिट्टी। उस भजन का परिणाम ये निकला कि अगम गोहरावे, अगम जो मन और इंद्रियों से परे है, अतीत है, अचिंत्य है, अगोचर है, वो केवल परमात्मा है। जब वो तुम्हें पुकारे बुलावे, बस जहां उसने बुलाया आवागमन की फिक्र क्षमा। मन मोदक नहीं भूख बुताही, वृथा मरव जनी गाल बजाई, कहो कि मैं आत्मा हूं शुद्ध हूं कोई लाभ नहीं। परमात्मा बुलाता है, परमात्मा बातें करता है। महाराज जी इस पर बड़ा बल दे, पूरा संसार एक स्वर से तुम्हें साधु कहे, अंत में तुके कुछो न मिली, रोए का आंसू न मिली, किंतु आत्मा तुम्हें साधु कह दे तुम वास्तव में साधु हो, दुनिया कहे चाहे उफरने पड़े। तो परमात्मा रीझ जाए, वो बुला ले, तभी आवागमन की फिक्र मिटी। माना कि आवागमन की फिक्र मिट गई तो ठीक है, एक चिंता मिट गई। इतना ही है कि उस आवागमन से मुक्त स्थान की स्थान में कोई विशेषता भी है। इस पर एक कबीर का भजन है, वहां कुछ खाने पीने का ठिकाना भी है कि नहीं, सेवक सती है कि नहीं, वो आवागमन से मुक्त स्थान कैसा है, वहां क्या कोई सुविधा है कि केवल फिक्र मिट गई बस निश्चिंत। फिक्र तो मिट जाती है। जब मुकदमे से आपका नाम हट गया, लेकिन मिला तो हमको कुछ नहीं, ऐसा तो कोई धोखा तो नहीं। इस पर एक कबीर का भजन है कि आवागमन से मुक्त पुरुष के सामने क्या व्यवस्था रहती है, वहां का भजन किस कोटि का रहता है, किस श्रेणी पर रहता है, वहां सेवा की व्यवस्था क्या है, उस पुरुष के सामने क्या रहन सहन है, वातावरण में कौन सामने उपस्थित रहते हैं। इस पर कहते हैं कि तौन घर चेती है रे भाई, तोहरा आवागमन मिट जाए, तवन घर चेती है रे भाई, जाके सेवा स्वर्ग उठी धावे, सेवा में सुख पाई, उल्टा सींचे जड़ा मूल को, शाखा पत्र अघाई, तवन घर चेती है रे भाई, तोहरा आवा गमन मिट जाई, तवन घर चेत करो भाई, इंगला पिंगला काम न आवे, सुख मन रहे समाई। उस घर में भजन किस श्रेणी का होता है, इस पर कहते हैं इंगला पिंगला काम न आवे, सुख मन रहे समाई, मंत्र तंत्र वह घर नाही, एक नाम लो लाई, तवन घर चेती है रे भाई, जा घर लक्ष्मी झाड़ू देत है, शिव करे कुतवाली, ता घर ब्रह्मा बने टहलवा, विष्णु करे रखवारी, तवन घर चेती है रे भाई, तोहरा आवा गमन मिट जाई, तवन घर चेती है रे भाई, चलहु हंसा वह घर चलहु, जहां आवा गमन ना होई, कहे कबीर सुनो भाई साधु, भला स्थान है कैसा, तो कहते हैं एक आश्चर्य, अचरज कहलो न जाई, तवन घर चेत करो भाई, तोहरा आवागमन मिट जाई, तवन घर चेती है रे भाई, उस घर के लिए चेत करो, तुम्हारा आना जाना, आना जन्म जाना मृत्यु, ये बंधन ही समाप्त हो जाएगी। घर के लिए चेत तो सभी कर ले, कभी कभी बड़े बड़े शहरों में हंगामा हो जाता है, कुछ राइट लग जाते हैं, बड़े वीक से लोग भाग के घर में पहुंचते हैं, बाहर का दरवाजा बंद, भीतर का बंद, सोफा में बैठ गए निश्चिंत, इतने में मकान ही उड़ गया। इंदिरा अपने घर ही में थी, लेकिन जब काल का समय आया, चक्कर चला, जाना पड़ा। सृष्टि में ऐसा कोई निवास नहीं है जो आवागमन से छूटा हो, यहां तक कि देवलोक भी जन्म और मृत्यु की परिधि के अंदर है। आ ब्रह्म स्तब्ध पर्यंत सर्व मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामेव केवलम, स्वयं सृष्टि निर्माता विधाता और उससे उत्पन्न सारा जगत, चौदहों भवन पुनरावृत्ति स्वभाव वाला है, एक धोखे की टटिया है, सत्य है, ध्रुव सत्य तेग हरि और हरि का नाम है और कुछ नहीं। मायामयम जादूगर कुछ दिखाता है, अंत में होता कुछ भी नहीं, ऐसे ही एक दिखावा है, सत्य केवल एक हरि, शाश्वत एक परमात्मा। तो इसलिए सृष्टि में कोई छिपाव की जगह ही नहीं। एक बहुत महापुरुष हुए हैं अरब में, तो सिकंदर के समय में उसने नाम सुन रखा था कि अमुक फकीर बहुत अच्छे हैं, कभी मैं दर्शन अवश्य करूंगा। आखिर उसने निश्चय किया कि आज मैं दर्शन जरूर करूंगा। जब वो युद्ध के अभियान पर चला तो दर्शन करते हुए जाना था, जब करीब पहुंचे तो मंत्री ने कहा कि हजूर ये जो घाम में बैठे हैं धूल में, यही हैं वो फकीर साहब। तो उन संत ने सुना तो ताके, बोले पहले तू बता तू कौन है। तो बोले मैं यहाँ का बादशाह सिकंदर। तो बोले ओ ये एक महीने से छकड़े लद लद के तोपे और अस्त्र शस्त्र जा रहे हैं सब तुम्हारे ही हैं। तो बोले हाँ, क्या पीछे और भी है कि सब चले गए? बोले अभी तो पूरा रिसाला बाकी, तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोले मैं टर्की जीतने जा रहा हूं। बोले फिर? बोले तुर्की, फिर अफगानिस्तान, फिर बोले काबुल, फिर बोले हिंदुस्तान, बोले फिर? तो बोले पूरा संसार। तो महात्मा बोले फिर? तो चुप हो गए। जब चुप हुआ तो उन संत ने कहा, यार क्यों अकारण रक्तपात करते हो? हमने तुम्हारे लिए जगह बना रखी कुटिया में और दो रोटी का भी प्रबंध है, आओ हमारे बाजू में बैठो। तो बोले मैं इस वक्त तो निकल चुका हूं, लौट के मैं जरूर आऊंगा। तो बोले अरे तुम न लौट पाए तब क्या होगा? सिकंदर चल तो दिया, विजय भी किया, भारत से जब लौटने लगा तो भयंकर बीमार पड़ गया। तब उसने घुड़सवार को दौड़ाया कि बोले उन महाराज को जाके मेरा प्रणाम करना, कहना महाराज मैं आप ही के पास सीधा चला आ रहा था, मुझे महलों में नहीं जाना था, लेकिन लगता है कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। वास्तव में नहीं पहुंच पाया, शरीर छूट गया। तो कहां गए वो दारा सिकंदर, कहां वो बारा दरी गई? चले गए सब अजल के मुख में, न खुशकी ना तरी गई रही। बड़े बड़े विजेताओं की ये दशा, आसपास योद्धाओं की कतार लगी हुई थी, मंज महल से सारी सुविधा के अंतराल से उठा ले गया। यह है आवा और गमन, आना और जाना। और 7 दिन बाद उन संत ने भी शरीर त्याग दिया। आयु का कोई भरोसा नहीं। इस भवातवि से बचने का एक स्थान है, एक घर कबीर ने खोज निकाला, तो उन घर चेती है रे भाई, उस घर के लिए चेत करो, तुम्हारा जन्म और मृत्यु का बंधन ही छूट जाए, तुम रहो और तुम्हारा धाम सदैव रहे। तो भला उस घर में जब पहुंच जाएंगे तो वहां की व्यवस्था क्या है? तो जाके सेवा स्वर्ग उठी धावे, जहां आवागमन से मुक्त स्थान पर पहुंचे उसकी सेवा में पूरा स्वर्ग दौड़ पड़ता है। महाराजा देवराज इंद्र, उनके गुरु बृहस्पति, वरुण, कुबेर, सारा देवलोक दौड़ पड़ता है सेवा में। क्यों? भला किस लिए? कि सेवा में सुख पाई, सेवा से ही उनको शाश्वत सुख की प्राप्ति है। ऐसे आवागमन से मुक्त, ऐसे महापुरुष की सेवा से ही उनकी मुक्ति का स्रोत है, उन्हें शाश्वत शांति और परम सुख की प्राप्ति का आशा है। इसलिए सेवा में सुख पाई, देवता सेवा में जुट जाते हैं। देवताओं ने तो सेवा रावण भी की थी, समय समय पर असुरों की सेवा की। कर जोड़े सुर दिशिप विनीता, बिरकुटी बिलोकत शकल शबीता। रावण के दरबार में हाथ जोड़कर संपूर्ण देवता और दिक्पाल खड़े थे, देखते थे कहीं इसकी निगाह टेढ़ी न हो जाए, विनीत भाव से खड़े थे। अग्नि वहां रसोई पका रहा था, वायु देवता वहां झाड़ू लगा रहे थे। बड़ी दयनीय दशा, सेवा तो जरूर, सेवा में देवता अवश्य थे, लेकिन रात दिन करा रहे थे, प्रभु कृपा करें इस खल से हमें मुक्ति त्राण दिलवाए। लेकिन यहां पूरा स्वर्ग दौड़ पड़ा और सेवा में सुख पाई, सेवा में उनको सुख मिल रहा है। अके सेवा स्वर्ग उठी धावे, सेवा में सुख पाई। लेकिन ये संभव कब? उल्टा सींचे जड़ा मूल को, शाखा पत्र अघाई, तवन घर खोजो हो भाई। संभव तभी है जब आप उलट के मूल को सींचो, जड़ को सींचो। हर व्यक्ति जड़ में ही पानी डालता है, धान हो चाहे गेहूं हो चाहे पौधा, मूल को सींचना भी चाहिए। लेकिन संसार आपकी, आपका मूल कुछ और है। ऊर्ध मूलम मदह शख मस्वतथम प्राहुरव्यम, छंदांशी अश्य परणामियस्तम वेदशः वेदवित। अर्जुन, ऊपर परमात्मा ही जिसका मूल है, नीचे कीट पतंग पर्यंत प्रकृति ही जिसकी शाखा पर शाखा है, संसार एक वृक्ष है। तो हम लोग पत्तियों को सींचते हैं, जहां खड़े हैं जिस वंश में वहां परंपराओं को सींचते हैं, प्रथाओं को सींचते हैं, कभी कल्याण नहीं होगा। भला पत्तियों के सींचने से भला आप, आपको हरी वो कैसे, पत्ती तो एक दिन झड़ जाएगी और उसके साथ आप भी नदारद। इसलिए जो परम तत्व परमात्मा वही मूल है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, त्रिगुणमयी प्रकृति ही गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं ही मूल बीज रूप से पिता हूं। तो उल्टा सींचे जड़ा मूल को, उलट के अपने उस मूल को, उद्गम को सींचो, उसकी साधना करो, उसमें प्रार्थना और चित को लगाओ। तो लगाने का परिणाम, शाखा पत्र अघाई तवन घर चेत करो भाई। तो शाखा प्रशाखा अनंत योनियों का जो संस्कार है वो सब शांत हो जाएगा। अघागे ये प्रकृति पुरुषत्व में विलीन हो जाएगी, परमात्मा ही शेष बच रहेगा। फिर कभी आप अतृप्त और असंतुष्ट नहीं होंगे। अगले पद में कहते हैं, उस घर में भजन का स्तर कैसा है। इंगला पिंगला काम ने आवे सुख मन रहे समाई। भजन का मूल कुंजी इंगला पिंगला श्वास पर श्वास के ऊपर है। कुछ महापुरुषों ने नियम बना रखा था, जो श्वास का भजन नहीं जानता ऐसे साधुओं को भी वो अपने कुटिया में दो रोटी नहीं देते थे। क्यों? कि साला स्वयं गुमराह है, दूसरों को पथ भ्रष्टि तो करेगा भूल के। और इसीलिए पहले जब नाम हमारी पकड़ में नहीं आया तो हम जबान से जपते हैं, फिर माला से जपते हैं, फिर कंठ से जपते हैं, फिर और पकड़ काम कर गई तो फिर श्वास से जपने लगते हैं। इंगला कहते हैं दाहिने स्वर को, पिंगला कहते हैं बाएं स्वर को, और इंगला पिंगला ताना भरनी सुखमन तार से बीनी। चित्रूपी चदरिया को बिनने का एक बाना बताया, कभी ने बहुत बल दिया इस श्वास पर, तो श्वास श्वास पर राम को व्रथा श्वास जनी को, न जाने इस श्वास का आवन हो या न हो। तो इंगला और पिंगला इस श्वास, इसके द्वारा श्वास पर श्वास का यजन करो, ये भजन की बड़ी अच्छी अवस्था। चित्त को शांत सब ओर से समेट कर खड़ा कर दो कि श्वास अंदर गई तो कहा क्या, बाहर निकली तो कहा क्या, उसको सुना भर करे। जहां सुनने की क्षमता आ गई, तारिनक धिनक धुनी अपने से उठे, श्वास में उठने वाला जो नाम है उसकी धुन स्वतः जागृत हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी और साधक का मन लो लगाकर श्रवण करने लगेगा। ये इंगला पिंगला श्वास पर श्वास का चिंतन है, ये एक अलग प्रश्न है, ये नितांत आवश्यक है। लेकिन उस घर में जहां पूर्ण निवृत्ति है, आवागमन के बंधन का छूटा हुआ स्तर है, वहां पर यह काम नहीं आती। सुख मन रहे समाई, मन सुख पूर्वक सहज समाहित हो जाए, श्वास में सहज प्रवाहित हो जाए, सुख पूर्वक टिके और प्रवाहित रहे, ये सुख मना अवस्था है। मन सुख पूर्वक सहज धारा पकड़े रहे तो सुख मन रहे समाई। बहुत से लोग शॉर्टकट खोजते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, जंत्र करते हैं, तंत्र करते हैं, ये सब माइक क्षेत्र की वस्तु। इस पर कहते हैं, मंत्र तंत्र वह घर नाही, एक नाम लो लाई तवन घर खोजो हो भाई। उस घर में न तो मंत्र चलता है, न तंत्र चलता है, न जंत्र चलता है, कोई जादू टोना वहां कामयाब नहीं होता, नेती धोती काम नहीं चलेगा। एक नाम लो लाई, एकमात्र नाम में लो लगावे, जागत में सुमिरन करे सोवत में लो लाए, सुरत डोर लागी रहे तार टूट ना जाए। जब तक जागे सुमिरन, जब सोवे तो पहले भली प्रकार सांस में लो लग जाए, तब निद्रा लाभ करे, सो के उठे तो सुरत वहीं लगी मिले, तार न टूटने पाए। सुमिरन कोई प्रदर्शन नहीं, सुमिरन ऐसा कीजिए जाने सुमिरन हार, या जाने करता रही ना जाने संसार। सुमिरन को इस प्रकार करना चाहिए, सुमिरने वाला ही जाने या प्रभु स्वयं जाने, संसार ने समझ पाए। यही कारण था कि इस अवस्था वाले महापुरुषों को प्राय लोगों ने पागल सनकी समझकर संबोधित किया। तो इस एक नाम लो लाई, केवल नाम जपना नहीं, नाम में लो लग जाए। साधक नाम जपे ले लाए वही सिद्ध यानी माधिक पाए, वो परम सिद्धि प्राप्त कर देते हैं। तो कबीर इस पर बल देते हैं कि न तो वह मंत्र कामयाब होता है, न तंत्र न जंत्र, कोई तीसरा उपाय, दूसरा उपाय है ही नहीं। एक नाम लो लाई अथवा ईश्वर पथ में उस जरामरण से परे आवागमन से रिक्त उस स्थान को धाम को प्राप्त करने के लिए नाम में लो लगाना नितांत आवश्यक है। ये समझना होगा कि नाम कैसे जपा जाए। अगले पद में कहते हैं कि उस घर में देवता तो सेवा में जरूर लगे, इसके आगे भी कोई विशेषता है। तो जा घर लक्ष्मी झाड़ू देते हैं शंभु करे कुतवाली। उस घर की ये महिमा, जो भी प्रवेश पाया उसको उसी को पाया तो लक्ष्मी झाड़ू देते। भला लक्ष्मी को झाड़ू देने क्या जरूरत, आपके पास आ भर जाए लक्ष्मी तो झोपड़ी कच्चा घर है पक्का बन जाएगा, और कुछ जोर पकड़ लिया तिमंजिला बन जाएगा, सवारी साधन हो जाएगा, और आगे बढ़ गए तो आप बगीचा लग जाएंगे, 10 माली खड़े हो जाएंगे, अलग से 10 कुक लग जाएंगे, चारों तरफ 100 पीस खड़े हो जाएंगे, टीवी वाइट है तो रंगीन हो जाएगा, स्वतः चमकने लगेगा घर की, वो मुझे खड़ जाएगी, मार्बल लग जाएगा, भला उसको झाड़ू लगाने क्या जरूर। वास्तव में झाड़ू लगाती है वहां लक्ष्मी सेवा में लग जाती है। उस घर में प्रवेश के साथ ही लक्ष्मी सब और से सिमट के उसकी सेवा में लग जाती है। एक महापुरुष वे दत्तात्रेय पिशाच की तरह उनकी रहनी थी, लोग प्राय पागल ही माना करते थे, सच्चे लो लगाए हुए महापुरुष, उन्हें कोई नहीं पूछता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनके चारों तरफ भीड़ खड़ी होने लगी, तो भगवान से प्रश्न किया कि बोले प्रभु हमको तो कोई नहीं पूछता था, ये आजकल भीड़ क्यों लग रही है। तो बोले कि लक्ष्मी जी तुहार सेवा करना चाहती। तो बोले भगवान हमने लक्ष्मी जी को कभी मनाया ही नहीं, वो क्यों सेवा करना चाहती है। तो बोले तुम्हारे हृदय में मैं आ गया इसलिए लक्ष्मी जी सेवा करना चाहती। बोले भगवान आप बना रहे हैं और लक्ष्मी को भगा दे। बोले ऐसा हो नहीं सकता, मेरे चरण छोड़ के लक्ष्मी को कहीं ठिकाना ही नहीं है, इसलिए वो रहेगी जरूर। बस दत्तात्रेय बड़े परेशान हुए, जगह छोड़ के भाग गए, जहां गए वहां भी वही व्यवस्था, फिर तीसरी जगह बदले तो वही व्यवस्था। तब भगवान ने कहा कि भागो मत, कहीं बैठ जाओ, अब ये होना है। तब दत्तात्रेय घूमते घूमते एक विशाल शिखर दिखाई पड़ा, पर्वत चढ़ना शुरू किया, चढ़ गए, ऊपर एक झरना दिखाई पड़ा, बैठ गए। बोले देखें ससुरी लक्ष्मी कैसे सेवा करती है, हम ही देखें, हम भी देखें कैसे सेवा करती है। वो गिरनार पहाड़ बब्बर शेरों से भरा पूरा, जहां आदमी यदाई कदा कभी पहुंचा होगा, उस जंगल के उतंग शिखर के पास बैठ गए। अब नीचे कस्बों में लोगों को स्वप्न में दिखाई देने लगा, इस शिखर के ऊपर एक महापुरुष बैठे। दूसरे ने कहा भैया सामने त्रिशूल गड़ा है, तीसरे ने कहा वो तीन मूढ़ी है, बड़ी दिव्य मूर्ति है, शंकर स्वरूप है। तो बोले यार 4-6 जने एक ही जैसा सपन देख रहे हैं, बात क्या है। कोतूहल बस लोग ऊपर चढ़ गए। 15वें दिन तो देखा कि मास्टर में महापुरुष बैठे थे, बस सेवा में लग गए। 11,000 सीढ़ी बना के पूरी समाज चढ़ गई, कुछ राजाओं ने आके अपने ताम्र पत्र पर अपना राज्य भी उनकी झोली में डाल दिया, लेकिन वो जस के तस बैठे रह गए। तो जहां लक्ष्मी झाड़ू देते अनसुईया आश्रम में, बरसात में 4-4 महीने आदमी से भेंट न हो कि आदमी होता कैसा है, महाराज जी निर्द्वंद वहीं पर अपने बैठे रहे। आहिस्ते आहिस्ते उपवास भी हुए, लेकिन एक समय ऐसा आया कि महाराज को अनुभव में आया कि आप इस कोठड़ी में न जाएं, थोड़ा रुक जाएं। तो महाराज ने कहा ये हमारे कोठड़ी है और हम न जाएं, आखिर बात क्या है। तो बोले यहां लक्ष्मी जी सेवा कर रही, चरण दाब रही है। तो थोड़ा किवाड़े में सांस रहा, महाराज कहें कि उस सांसिया से जब हम झांके तो मैं ही सोए हूं, मोरे गुड़वा दाबत है और मोही के मना करत है। हम बोले महाराज क्या मतलब हुआ। तो कहे हमारा जो स्वरूप है उसकी वो सेवा कर रही है, स्थूल शरीर देख रहा है। उस दिन से ऐसा पासा पलटा, आकाश वृत्ति से व्यवस्था बरसने लगी। चित्रकूट में हल्ला हो गया कि परमहंस जी का खर्चा कैसे चलता है। तो लोगों ने कहा कि वो सोना बनाते हैं, कुछ दिन बाद हल्ला बदला कि नहीं नोट छापते। महाराज कहे मोरे भीतर है सब बाहर कहूं कुछ नहीं बेटा, सारी मशीन मोरे भीतर ला गई। सुर दुर्लभ सुख करी जग माही अंत काल रघुपति पुर जाए। देवताओं को जो अति दुर्लभ है वो सुख भी वहां सुलभ है। किसके? जिसको भगवान पुकार ले आवागमन से मुक्ति का सर्टिफिकेट दे दे। तो जहां लक्ष्मी झाड़ू देते हैं वो सहज सेवा में लग जाती है। और शंभु करे कुतवाली, शंभु स्वयं भूव जो स्वयं स्वरूप है जिसमें वो स्थिति है वो स्वरूप स्वतः कुतवाली करता है। कुतवाल का काम है नियंत्रण रखना, व्यवस्था को कायम रखना। अब जो भी महापुरुष के पास आता है कोई दुख लेके आता है, कोई कोई कैसा उदंड भी पहुंच जाता है। वहां तो भेड़ और बकरी सबको, वो शेर और बकरी सबको आना है, उधर बार ही ऐसा ही है, किसी के लिए मना ही नहीं। तो महापुरुष जिस स्वरूप में स्थित है, जो स्वयं भू है, स्वयं सहज स्वरूप जिसकी स्थिति है वो स्वरूप श्रुत है, उनका फैसला करता है, जिस लायक है उसके अनुसार उनकी वस्तु देता है, मुक्ति वालों को मुक्ति और भुक्ति वालों को भुक्ति। राम झरो के बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जा की चाकरी तैसी ता को दे। राम के झरोके में, प्रभु के दरबार में जो प्रवेश पर बैठ गया, जिसको स्थान मिल गया, वो सबका मुजरा ले, सबकी प्रार्थनाएं स्वीकार करता है। लेकिन प्रार्थनाएं हृदय से है कि ऊपर से है, करणी का स्तर कैसा है, ये है उनकी चाकरी, जैसी चाकरी वैसा उनको देता है, स्वरूप देता है। पूज्य महाराज जी कहे हो मोरे रूप से न जाने लोग काका पा जाते, मैं हूं नहीं जान पाओ। तो शंभु करे कुतवाली। और जहां ब्रह्मा भय टहलवा, विष्णु करे रखवारी, तवन घर छे तो हो भाई। और वहां ब्रह्मा भय टहलवा, अहंकार शिव बुद्धि अच, अहंकारी शिव है, बुद्धि ही ब्रह्मा है। तो साधारण बुद्धि जो सबके पास ही, ये बुद्धि ब्रह्मा ने। ब्रह्म पद की चार अवस्थाएं हैं। पहले ब्रह्म विद, ब्रह्म की विद्या से युक्त। दूसरा ब्रह्म विद्वर, उस विद्या में श्रेष्ठता प्राप्त कर ली। तीसरा ब्रह्म विदुरियान, ब्रह्म विद्वता की वह अवस्था जिस पर उसका अधिकार प्राप्त कर लिया। ऐसा महापुरुष दूसरों को विद्या प्रदान भी कर सकता है, लेकिन है अभी अधूरा। और चौथी श्रेणी है ब्रह्म विद्वरिष्ट, ब्रह्म विद्वता का वह स्तर जिसमें इष्ट प्रवाहित है, वो परमात्मा ही प्रवाहित है। ऐसी बुद्धि ही ब्रह्मा है। परमात्मा जैसे जैसे रेले करता, जो देता उसको ग्रहण करती है और कार्य करती रहती है। जहां वहां ब्रह्मा भय टहलवा, वो टहल करती है। महापुरुष सोचता नहीं बुद्धि से क्या करूं और क्या नहीं करूं, कभी नहीं। वो स्वतः सोचा सोचा निर्णय आता है और वो अपने निर्णय के अनुसार कार्य करता है। टहल करे ब्रह्मा करे, जहां ब्रह्मा टहल करते। और विष्णु करे रखवारी, कोई भी निर्णय है तो स्वतः आएगा और स्वतः बुद्धि लेगी और अपना कार्य कर देगी, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं। और विश्व अणु से विष्णु, विश्व में जो अणु सत्ता है, कण कण में व्याप्त है, जो सबकी पालन करने वाली परशक्ति है परमात्मा की, वो स्वतः वहां रखवाली करती है। योगक्षेमम वहाम्यहम, उसके योग योग की व्यवस्था और रहने की सुरक्षा, उसका भार स्वयं वहन करते हैं। इसलिए तवन घर चेतो हो भाई, उस घर के लिए चेत करो। सारे के सारे जीव अचेत है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृतो संयम, इस जगत रूपी रात्रि में सारे प्राणी अचेत पड़े हुए हैं, निश्चेष्ट पड़े हुए हैं, केवल संयमी पुरुष जाग जाता है। रात दिन जो दौड़ धूप करते हैं मात्र स्वप्न देखते हैं, केवल संयमी पुरुष, संयम तो एक ईश्वर में होता है, ईश्वर के प्रति समर्पण के साथ संयम आरंभ होता है। तो चेत करो उस घर के लिए जहां तुम स्वप्न देख रहे हो, ये तो धोखा, और जिसमें इतनी बड़ी व्यवस्था। अंत में कहते हैं चलहु हंसा वह घर चलहु, जहां आवागमन ना हो। संत हंस गुण गहे पे, परिहरि बारी विकार। वे संत, वे सतपुरुष, वे श्रद्धालु हंस हैं, विकार रूपी बारी का त्याग करके और ईश्वरीय गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेते। मछली को पानी के बाहर जिलाना चाहे, शेर को घास खिला के जिलाना चाहे, क्या जिएगा? कभी नहीं। ऐसे ही हंस दूध छोड़ के दूसरे सहारे नहीं जी सकता, तो वे संत हंस है जब ईश्वरीय गुण रूपी दूध ही उनका जीवन है। विषय रूपी बारी का स्पर्श किया तो मृत्यु निश्चित है, जैसे मछली मर जाती जल के बाहर। ऐसे संतों के लिए, ऐसे विवेकी पुरुषों के लिए संदेश देता है कबीर, चलो उस घर के लिए प्रस्थान करो जहां आवागमन नहीं होता। तो भला वो स्थान है कैसा? कहें कबीर सुनो भाई साधु, करीब 95% कबीर के पद संतों को उद्देश्य बनाकर रेले हुए हैं। जानते थे मैं जितना छिपा कर कहता हूं, उस वैदिक तथ्य को जितना गोपनीय रख के कहता हूं, इसको समझने की क्षमता सब में तो नहीं हो सकती, लेकिन संसार के इतने बड़े जन समूह में जिनमें वे क्षमता पाई गई वो थे संत, साधना में प्रवृत्त, एक सीढ़ी पार किए हुए। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, वो समझे और फिर उनके द्वारा सब समझे। तो अचरज कहलो न जाई तवन घर चेतो हो भाई, संत कबीर कहता संतों समझो, वो एक आश्चर्य है, वाणी का विषय नहीं है, अगोचर है, अचिंत्य है, चित्त का विषय नहीं है, लेकिन एक आश्चर्य वो कहने में नहीं आता, उस धाम की रहनी गहनी कहने में नहीं आती। जिन देखा सो कहा नहीं, कहा सो देखा ना, रही मन अगम बात के कहन सुनने के नाही। जिन्होंने देखा उन्होंने कहा ही नहीं, और जो कहता है उस बेचारे ने अभी देखा नहीं, अगम्य है, जो मन और इंद्रियों से अतीत है वो कहने सुनने की नहीं। तुलसी कहते हैं नाम रूप गति अकथ कहानी, नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय। कबीर ने इस पर तो बार बार बल दिया कि भला उस स्वरूप कैसा, तो कहे कबीर गूंगे की शक्कर खाई सोई पे जाने, गूंगा शक्कर खाता मुस्कुराता सिर हिलाता लेकिन व्यक्त नहीं कर सकता, खाता वो जानता है। ऐसा ही है ये धाम, आवागमन से मुक्त स्थान महात्मा। इसलिए परमात्मा पुकारे, जहां उन्होंने बुलाया तासाटी स्थिति उनके स्वरूप में, उनको स्वरूप मिला, स्थिति पाई, ईश्वर भाव की प्राप्ति ही आवागमन से मुक्त एकमात्र स्थान है और कोई नहीं। और उसके लिए सबका आज जरूर है कि नाम में लो लगाएं, और कबीर इस नाम ही हम कैसे जागृत हो, उस पर संत कबीर ने बल दिया है कि सेवक को सदगुरु मिले, कछु रहे न तवा ही, कहे कबीर निज घर चलो जहां काल न जाए। सेवक को जब सदगुरु मिले तब कुछ रहे न तवा ही, किसी प्रकार का अभाव नहीं रहेगा, बस जहां सदगुरु से जहां शिक्षा मिल गई तो निज घर चलो, उसी के सहारे साधना आरंभ करो, जहां काल न जाए, जहां काल का आना जाना है, जो अकाल पुरुष काल से अतीत उसी का नाम है आवागमन से मुक्ति। वहां पर सारे देवता सेवा में, ब्रह्मा विष्णु महेश सेवा में, लक्ष्मी जहां लगावे झाड़ू, लेकिन एक नाम लो लाई। हर हालत में साधना का आरंभ नाम से है, अंत भी नाम की सुखमना अवस्था से है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय।